नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। अक्सर हम सुनते हैं कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के बचाव के लिए परिवार वाले महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। लोग गंभीर बीमारियों का असर कम करने के लिए गायत्री मंत्र के उच्चारण करते हैं। डॉक्टर्स भी कभी कभी तीमारदारों से ईश्वर की प्रार्थना करने की सलाह देते हैं, पर अब तक इसे महज आस्था और विश्वास ही माना जाता रहा है। पर क्या महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या ओम के उच्चारण की मदद से गंभीर बीमारियों का असर कम किया जा सकता है? इसकी अब वैज्ञानिक तौर पर स्टडी की जा रही है। मरीजों पर महामृत्युंजय मंत्र के जाप का कितना असर होता है, इसे जानने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्टडी भी की गई। साथ ही एम्स में गायत्री मंत्र का प्रभाव जानने के लिए रिसर्च भी किया जा रहा है। ऐसे कई शोध हैं जिसमें ये देखा गया कि मंत्रों के उच्चारण से या उनके जाप से मरीजों में सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, जिसमें कई गंभीर बीमारी शामिल है। तो आज हेल्थ 24 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आस्था और विज्ञान के इस अनोखे संगम का कितना हो रहा है इफेक्ट, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी गंभीर बीमारी है जिसमें मंत्रोच्चारण का फायदा दिख रहा है या मिल रहा है, और आने वाले समय में इसका किस तरीके से उपयोग होगा। तो आइए सबसे पहले तारुफ कराते हैं तमाम डॉक्टरों से जो आज इस विषय पर हमसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, जो कि स्पिरिचुअल बायोलॉजी के जाने माने जानकार हैं और साथ ही साथ चेयरमैन है कैंसर केयर सर्विसेज के। इसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर केपी कोचर, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एम्स से। इन दोनों से चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम करते हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता आपसे, और जिस तरीके से जो आखिरी शब्द था कि विज्ञान और आस्था का जो संगम है वो किस तरीके से इलाज में बदलेगा, किस तरीके से गंभीर बीमारियों में ये काम करना शुरू करेगा। कई स्टडीज हो रही हैं जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ प्रभाव दिख रहा है, तो क्या अब इस प्रभाव को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी?
जी, जैसे आपने बेखूबी कहा कि पहले हम डॉक्टर्स क्या किया करते थे, पेशेंट को ड्रग या डिवाइसेस या हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स उनको देते थे, लेकिन पेशेंट की जो अपनी पार्टिसिपेशन है, ओन पार्टिसिपेशन है, उसकी जो खुद की मेहनत है, हम उसको एक इस इलाज में, हीलिंग में उनको भागीदारी नहीं देते थे। लेकिन अब क्योंकि साइंस को ये पता लग गया है कि इसमें जो मरीज की अपनी भागीदारी है वो बहुत ज़रूरी है, जो मरीज की अपनी भागीदारी होने की वजह से क्या होता है, हमारे हीलिंग में और वेलनेस में जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा उभर कर सामने आता है। इसलिए जो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है पेशेंट की, अपनी ओन पार्टिसिपेशन है, वो आध्यात्मिक विज्ञान उसको वो पकड़ देता है। तो हमने तकरीबन 500 कैंसर के पेशेंट मैंने अपने डिपार्टमेंट में स्टडी किए एक स्पेशल टेक्निक से, जिसे हम बॉडी इमेजरी कॉग्निटिव मेथड बोलते हैं। उससे हमने ये देखा कि जो पेशेंट को हम एक इस प्रकार से ध्यान करवाते हैं कि वो अपनी सेल्फ पार्टिसिपेशन इमेजिन करे कि उसकी होल बॉडी जो है, आप देखेंगे इस कार्टून में कि जो होल बॉडी है वो जगमग कर रही है, ग्लिटरिंग है, हेल्दी है। इसको हम 4D बोलते हैं। इट इज़ ए डिजीज लेस, डिफॉर्मिटी लेस, डिवाइन बॉडी विच इज़ डेथलेस, एंड दिस गिव्स द पेशेंट, ये एक पेशेंट को एक ऐसा जरिया देती है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? वो अपने शरीर को एक ऐसी वस्तु समझे कि जो डिजीजलेस है, डिफॉर्मिटी लेस है, डिवाइन है एंड डेथलेस है। इसकी वजह से क्या होता है, जो उसको हम बोलते हैं एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जब पेशेंट को कैंसर जैसी एक बीमारी हो जाती है, वो सोचता है मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप या मेरे बच्चे, मेरी वाइफ मुझे जानेंगे, याद करेंगे, नहीं करेंगे, मेरा क्या रोल रह जाएगा, मैं एग्जिस्ट करूँगा कि नहीं करूँगा, कि मैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, मेरी एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए मिट जाएगी इस पृथ्वी से। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ब्रेन को ओवरलोड कर देती है। इस इंफॉर्मेशन को हम ब्रेन को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए, हम इसको 4D या गुप्ता ग्लिटरिंग टेक्निक से इसको हम अनलोड करते हैं।
देखिए डॉक्टर, अगर मैं इसको बहुत सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करूं, जिस तरीके से चर्चाएं हुई कि एम्स स्टडी कर रहा है, एम्स ने आईआईटी के साथ मिलकर स्टडी किया, संस्कृत विद्यापीठ के साथ मिलकर स्टडी किया है, आरएमएल ने स्टडी किया है, इसमें जब ये देखा गया जब स्टडी के दौरान कि जो कोमा में जा रहे पेशेंट्स हैं या कोमा में चले गए पेशेंट्स हैं या जैसा आपने जिक्र किया कि कैंसर के पेशेंट्स, उनमें कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है जिसके कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं और वो साथ चल रहा है, एलोपैथिक इलाज के साथ चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये एक ऐसा एक प्रश्न है कि जहाँ अगर भारत देश में अगर हम बात करें तो भारत देश में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर इस तरीके की स्टडी हो रही है तो इस स्टडी का फायदा हर धर्म को कैसे मिलेगा, क्योंकि मंत्रोच्चारण सनातन धर्म के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसे नहीं अपना पाएंगे, तो फिर उसमें कैसे इलाज ये संभव होगा।
देखिए बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न ये किया है। ये मान लीजिएगा, मैं इसको अगर एक शब्द में बोलना होगा, मैं ये आपको बताऊंगा कि जितनी स्टडी मैंने अभी की है फॉर लास्ट 25 इयर्स अबाउट स्पिरिचुअल बायोलॉजी, ऑल द रिलीजन्स, ऑल द सेक्ट, ऑल द धर्म, दे फॉलो द सेम थिंग, जो हम बोलते हैं जिसको इनलाइटनमेंट, ये बायोलॉजिकली सेम प्रोसेस होता है चाहे किसी भी धर्म में हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसका कि हम जब अपने पेशेंट्स को, जिसका मैंने तकरीबन 500 पेशेंट्स का डाटा पब्लिश किया है और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हांगकांग में और इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर सिंपोजियम सैन एंटोनियो में प्रेजेंट किया डाटा, और यहाँ अपनी एशियन ऑन्कोलॉजी मीटिंग इन दिल्ली में मैंने ये डाटा प्रेजेंट किया। इसमें आप देखेंगे कि हर एक धर्म का, आपने जो बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कुछ धर्म जो ये मैंने आपको ये बॉडी दिखाई थी, आप देखेंगे इस शरीर को जो जगमग कर रहा है, ग्लिटरिंग कर रहा है, जो जुगनू की तरह या मनी की तरह टिमटिमा रहा है, इस हेल्दी शरीर को अगर आप देखेंगे तो ये इस्लाम में हम इसे बोलते हैं नूरानी, और अगर आप देखेंगे सनातन धर्म में हम इसे कहते हैं दिव्य शरीर, और अगर हम वेदों के लैंग्वेज में बोले तो इसे बोलते हैं ब्रह्म स्वरूप, और अगर हम इसको क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो आप आएंगे हम इसको बोलते हैं डिवाइन बॉडी और डिवाइन बीइंग और दैट द लॉर्ड इन द किंगडम ऑफ लाइट। सो जो चाहे आप इसे ब्रह्म प्रकाश कह लीजिए, दिव्य कह लीजिए, नूरानी कह लीजिए और हरि स्वरूप कह लीजिए, ये सब जो है ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म को दर्शाता है, ये इसी शरीर का जिसका हम अपने कैंसर मरीजों को ध्यान कराते हैं। तो इसमें जितना भी आप एक थ्रेशोल्ड है, जितना आप ध्यान करते रहेंगे सेल्फ हीलिंग, तो बायोलॉजिकल बीड फीडबैक मैकेनिज्म, आप सोने से पहले और जस्ट जागने के बाद इसी का, अपने दिव्य शरीर का अगर आप ध्यान करेंगे, मनी शरीर का जो मनी की तरह जगमगा रहा है, हीरे और मनी में यही फर्क होता है कि हीरा प्रकाश पड़ने से जगमगाता है और जो मनी है वो स्वयं अपने आप स्वतः ही अपने अंदर से जगमगाती है। तो मनी स्वरूप शरीर का, ब्रह्म स्वरूप शरीर का, दिव्य नूरानी और डिवाइन बीइंग का अगर आप अपना सेल्फ का ध्यान करेंगे तो आप अपने आप पाएंगे कि ये सब रिलीजन्स में किसी को एक दूसरे को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब, हम सब असल में ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे इसको आप वर्ल्ड पीस के लिए इम्पोर्टेंट मान लीजिए, रिलीजियस टॉलरेंस के लिए इम्पोर्टेंट मान लीजिए, स्पिरिचुअल साइंस ब्रदरहुड के लिए।
डॉक्टर यहाँ मैं ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा आपने कहा कि देखिए हर धर्म में कहीं ना कहीं जो आस्थाएं हैं वो इस कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और शब्द बेशक अलग हो सकते हैं लेकिन तरीका वही होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये एक ऐसा विषय है जहां अंधविश्वास भी बहुत जल्दी लोगों को हो जाता है, कई बार इन तरीकों का इस्तेमाल जिस तरीके से होता है उसमें लोगों का आस्था इतनी बढ़ जाती है कि विज्ञान को भूल जाते हैं, तो ये जो बहुत थिन लाइन है उसको कैसे देखा जाएगा और किस तरीके से उस पर वर्क करने की ज़रूरत है?
आपने बहुत ज़रूरी मुद्दा सामने लाया। देखिए मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, अगर हम पानी पीते हैं और फिर उसके बाद पेशाब करते हैं तो हमारे को ये बड़ा सीक्रेट लगता है, लगता है कि भगवान ने पता नहीं कैसे बनाया, क्या अजूबा है, कैसी मशीन है। लेकिन जब हमारी, हमको पता, ये समझ आ जाती है कि ये सब कुछ किडनी की वजह से हो रहा है, और हमारे शरीर में किडनी कहाँ है, इसका पता शुरू में मान लीजिए अगर हमारे को पता नहीं हो, हम बॉडी को कोई सोचता है किडनी छाती में है, कोई सोचेगा पेट में है, लेकिन असल में ये हमारे आपको पता है रीढ़ की हड्डी के पिछले वाले हिस्से के साथ होती है, तो ये पीठ पीछे होती है। तो अगर आप इवन हमारी जनता को देखेंगे 90% को ये पता नहीं होगा, लेकिन हम सब पानी पीते हैं, सब पेशाब जाते हैं, लेकिन अगर आप किडनी के बारे में पूछेंगे किडनी की लोकेशन कहाँ है, तो मैं कहता हूँ इंडिया की पॉपुलेशन में ही आप देखेंगे कि 80% लोग इसको शायद ठीक ना बता पाए। तो उसी प्रकार से हमारा धर्म के बारे में है, हम हर एक अलग अलग धर्म का प्रचार करते हैं और अलग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, या जिसको मैं मोर एग्जैक्ट बोलूंगा स्पिरिचुअल बायोलॉजी की अगर हमें समझ और अच्छी हो जाती है तो उससे हम ये बहुत आसानी से जान पाएंगे।
परसेंटेज में समझना चाहूं, चलिए मैं इसको इस तरीके से समझना चाहूंगी कि कोई पेशेंट है जो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, मान लीजिए कोमा में है, तो उसका एलोपैथिक इलाज तो चल रहा है लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल साइंस का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी मंत्रोच्चारण हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट होता है और कैसे पता चलता है कि इसमें दवाई का असर हो रहा है या फिर स्पिरिचुअल साइंस का असर हो रहा है?
देखिए, अगर सेल्फ दो तरह के पेशेंट हम मान सकते हैं, जो आपने एग्जांपल दिया कोमा का पेशेंट, और एक होता है कि जो कोमा का पेशेंट नहीं है, मान लीजिए कैंसर का पेशेंट है, वो अभी जागृत अवस्था में है, उसे अपना अच्छा बुरा या पता लग रहा है, या उसको पता लग रहा है कि मुझे कैंसर हो गया है तो इससे फाइट करना है, तो मेरी लाइफ थोड़ी सी श्रिंक भी हो सकती है, तो उसके आगे सामने चैलेंज आ जाता है। कोमा का पेशेंट ऐसा है कि वो तो कोमाटोज है, वो अपने एक्टिवली कुछ सोच नहीं पाएगा, या कुछ आप उसको बॉडी इमेजरी टेक्निक या कॉग्निटिव टेक्निक और स्पिरिचुअल वेलनेस की कोई टेक्निक बताएंगे तो वो उसको उस समय एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। जैसे हमने बताया कि 500 पेशेंट को हमने ध्यान की प्रक्रिया की, तो कोमा वाला पेशेंट उसको ध्यान नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए कोमा के पेशेंट को हम मंत्रों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो सुनने की प्रक्रिया अभी उसकी जारी है।
मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासकर जब विज्ञान और आस्था की बात होती है तो इसमें एक बड़ी थिन लाइन होती है और कई बार ये अंधविश्वास में चली जाती है। तो यहां हम यही कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, जरूरी है कि जानकारी आपके पास पूरी हो, चाहे किसी भी विषय पर हो। स्पिरिचुअल साइंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन बिना विज्ञान के स्पिरिचुअल साइंस भी अधूरा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको भी आप बखूबी समझे और उसको अपने जीवन में अपनाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आपने कीमती समय निकाला। आज के लिए बस इतना ही, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज 24।